श्रुति का स्वरूप। हमें श्रुति की साक्षात अभिव्यक्ति व अनुभूति को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से ही समझना चाहिए, पर स्वाध्याय व धारणा के अभाव में हम वैदिक संज्ञाओं के वैज्ञानिक स्वरूप को नहीं जान पाते। अतः ऐसी मनस्थिति में जब कभी हम कपोल कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में या तो लिपि नहीं होगी, या लिखने के लिए कागज नहीं होंगे, या दोनों ही नहीं होंगे। अतः उस समय के गुरु शिष्यों को बोल बोल कर पढ़ाते थे और शिष्य उन्हें सुन सुनकर अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लेते थे। इस प्रकार यह सुनने की गुरु परंपरा बन गई, अतः वेदों को श्रुति कहते हैं। पर भाई, श्रुति और स्मृति में तो बहुत अंतर है। यह तो हम जानते ही हैं कि जो पहले सुना था वही अब स्मृति बन जाता है, पर श्रुति तो तब भी श्रुति ही थी और अब भी श्रुति ही है। श्रुति के आंतरिक नित्य वर्तमान स्वरूप के कारण ही इसे श्रुति जैसी सार्थक संज्ञा मिली है। अतः श्रुति तो श्रुति ही बनी रहती है, कभी भी स्मृति नहीं बनती। हाँ, इतना तो अवश्य है कि जो सुनी जाती है वह श्रुति कहलाती है। सुनना तो वर्तमान काल में ही होता है ना, अतः श्रुति का काल से अप्रभावित मूल स्वरूप तो नित्य वर्तमान ही रहता है। इसे तो कभी भी प्रत्यक्षतः सुना देखा जा सकता है। इसी कारण यह श्रुति तो साक्षात अनुभूति ही है। यद्यपि श्रुति के पूर्ण अर्थ को लौकिक भाषा में व्यक्त करना असंभव है, तब भी बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात हमारे आचार्यों ने वेदार्थ की हमारी प्रारंभिक धारणा के लिए वेदों के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ किए हैं। पर इस सत्प्रयास से भी वेदार्थ की ओर बहुत थोड़ा सा संकेत ही हुआ है। वेद तो केवल और केवल साक्षात अनुभूति ही है। यह सृष्टा सृष्टि रचना का केवल विवरण ही नहीं है, यह तो सृष्टा सृष्टि प्रक्रिया का एकात्म भाव पूर्वक साक्षात अनुभूति है। कालातीत तत्वानुभूति श्रुति से हम गतिशील काल में जीने वालों का परिचय व हमारी अनुभूति की पात्रता विकसित करने के लिए ही ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों का निर्माण किया था। अतः श्रुति और स्मृति में बहुत अंतर है।
प्रत्यक्षानुभूति की प्रक्रिया। देखो भाई, स्थूल के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त तत्वानुभूति होने व उसे प्रकट करने की बात तो बहुत बड़ी है। अभी तो हमारे लिए इस स्थूल जगत की सामान्य प्रत्यक्षानुभूति को भी यथारूप अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। मान ले आप एक रमणीय उद्यान में गए, वहाँ एक बहुत सुंदर हरा भरा वृक्ष देखा। सभी दिशाओं में अपने अपने भाव से दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ी हुई अनेक शाखा प्रशाखाओं में सहस्त्रों पुष्प खिले हुए थे। बोलकर कहने योग्य मुख भले ही उसके पास न हो, पर वह अपनी उपस्थिति मात्र से ही अपने विशिष्ट भावों को अभिव्यक्त करते हुए शोभायमान हो रहा था। जी भरकर देखने मात्र से यह सारा दृश्य अपनी भाव संवेदनाओं सहित हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। पर अपने इस अनुभव को किसी व्यक्ति को बोलकर बताना हो तो अब कौन सी शाखा प्रशाखा कैसे किस ओर मुड़ी हुई थी, पत्र पुष्पों से भरी हुई, कितनी सुंदर लग रही थी, वहाँ की सौंधी सुगंध, सुख की अनुभूति, यह सब कैसे समझावें? यह तो तभी संभव है ना, जब हम में अंतःकरण के इस अनुभव को ठीक ऐसे ही किसी को संप्रेषित करने और सामने वाले में उसे ग्रहण करने की पात्रता हो, है ना? हाँ, ऐसा करना संभव है। यह तो हम सबका रात दिन, नहीं नहीं, दिन रात का अनुभव है कि हमारे पास आधुनिक मोबाइल हो और सामने वाले के पास भी वैसा ही मोबाइल हो, तो सुख सौरभ आदि भाव संवेदनाएं तो नहीं, पर स्थूल जगत के किसी भी स्थिर दृश्य ही नहीं, दृश्य श्रव्य चलचित्र को भी हम उसे और वह हमें भेजते रहते हैं ना। इसी प्रकार प्रकृति की शुद्ध सात्विक कारण भूमि में इन्हीं प्राकृत नियमों का उपयोग करते हुए अपने अनुभव को और भी अधिक गंभीर भावानुभूति के रूप में संचरित संप्रेषित किया जा सकता है। यदि हम कृत्रिम और अवैज्ञानिक आचार व्यवहार से अपनी अंतःशक्ति को कुंठित न करें तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव संवेदनाओं की ग्राहक संवाहक और संप्रेषक मानवीय अंतःकरण से श्रेष्ठ और समर्थ कोई कृत्रिम यंत्र सारी पृथ्वी पर न अभी है और न ही भविष्य में कभी इतना श्रेष्ठ कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जड़ यंत्र बनाया जा सकेगा। सभी भाव संवेदनाओं की अनुभूति और अभिव्यक्ति का आधार तो एक चैतन्य ही है ना। अतः चैतन्याश्रित इन भाव संवेदनाओं के रूप में प्रकाशित होने वाले प्राकृत नियमों को सम्यक रूप से जानने का एकमात्र उपाय अनुभूति ही है, अध्ययन नहीं। हाँ, सत्वमयी प्रकृति से आत्मभाव पूर्वक आंतरिक एकत्व की अनुभूति से ये प्राकृत सिद्धांत तो स्वतः स्वभावतः आत्मसात होते हैं, पर इस सात्विक अनुभूति के लिए परम विशुद्धांतकरण अपेक्षित है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ही परम विशुद्ध मानवीय चेतना ने वैदिक ऋचाओं के रूप में सृष्टि के चिन्मय स्पंदनों को आत्मसात व सत्पात्र में संचरण संप्रेषण का पुरुषार्थ प्रकट किया था। धारण वृक्ष के अनुभव को थोड़ा स्मरण करिए तो यह दृश्य हम तक कैसे पहुंचा? परावर्तित प्रकाश किरणों के साथ यह भाव दृश्य स्पंदित होता हुआ हमारी दर्शनेन्द्रिय तक और दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से मन तक पहुंचा और मन अंतर मन ने इस भाव स्पंदन का अनुभव किया, है ना? भाई, यह तो स्थूल जगत का अति सामान्य अनुभव था। इस अनुभव में प्रकृति के हमसे भिन्न अनेक कारकों का सहयोग भी रहा। अतः इस पर संवेद्यात्मक अनुभूति में तो वृक्ष और हम दोनों दर्शन होने पर भी पर अर्थात अलग ही रहे और दर्शन की प्रक्रिया भी बहुत लंबी थी। समाधि में तो दृष्टा और दृश्य में भेद नहीं रहता, उनमें तो पूर्ण तादात्म्य ही रहता है। अतः स्वतः स्वभावतः होने वाली इस स्वसंवेद्यात्मक स्वानुभूति में तो दर्शन की ऐसी प्रक्रिया की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि ऐसे ही मंत्र दृष्टा थे। संचरण संप्रेषण, एक रोचक बात बताऊं आपको, जैसे वेद मंत्रों की अनुभूति में दृष्टा दृश्य में भेद नहीं रहता ना, ऐसे ही अभिव्यक्ति में भी सद्गुरु सच्चिष्य में भेद नहीं, आंतरिक रूप से पूर्ण तादात्म्य ही रहता है। शिष्य के सत्याग्रह और सद्गुरु के अनुग्रह में गुरु शिष्य दोनों ग्रह धातु की दृष्टि से एक रूप ही होते हैं। हाँ, दोनों के भावनात्मक धारणात्मक एकत्व से ही उनके भीतर प्रतिष्ठित वाक् तत्व के एकत्व बोध से सहज संप्रेषण संभव होता है, पर शिष्य में सत्य के प्रति वैसा आग्रह और सद्गुरु के प्रति भी उतना ही समर्पण न हो तो? शब्द वेद, वृक्ष के दर्शन का एक बार और स्मरण करिए तो, उस भाव दृश्य का स्मरण जो स्पंदित होता हुआ हमारे मन तक पहुंचा था। भाई, यह तो भौतिकी का बहुत ही सरल सिद्धांत है कि जहां कहीं भी कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों न हो, स्पंदन होता है ना, वह ध्वनि अवश्य ही होती है। यह ध्वनि उन स्पंदनों व स्पंदित होने वाले भावों के अनुरूप ही होती है। अतः वाक् तत्व के रूप में भावों की अनुभूति व संप्रेषण इन स्पंदनों के माध्यम से ही होता है। समाधि में होने वाली इन स्वतः स्फूर्त भावों की अनुभूति यानी वेद मंत्रों के दर्शन को ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जिसमें सुनना और देखना आदि भाव संवेदनात्मक स्पंदन एक साथ मिले हुए है ना, ऐसी अनुभूति पश्यंती वाक का ही विषय बनती है। कारण जगत की यह शुद्ध भाव संपदा सृष्टि यज्ञ के क्रम में जब सौर प्राण से युक्त होकर स्पंदित होने लगती है ना, तो भावों के प्राणमय रूप धारण करते ही यह प्राणिक स्पंदन मध्यमा वाक में परिणत हो जाता है। यही मध्यमा वाक सृष्टि यज्ञ में आहुति लगते ही प्राणों के स्थूल रूप धारण करने से वायुजन्य स्थूल आघात के ध्वन्यात्मक स्पंदनों से युक्त वैखरी वाणी में परिणत हो जाती है। पुनरावलोकन, परावाक चैतन्य स्वरूप है, यह तो विशुद्ध विज्ञान है, स्पंदन रहित सदा एक रस स्थिति है। कार्य कारण से परे इस परम अव्यक्त में तो देश काल क्रम मात्रा आदि की कल्पना भी नहीं है, यही श्रुति का शाश्वत स्वरूप है। सारी सृष्टि की उपादान कारण स्वरूपा पश्यंती वाक भी कार्य दृष्टि से तो भले ही मध्यमा वाक के रूप में प्रकट हो, पर कारण दृष्टि से तो अव्यक्त ही रहती है। अतः समाधि के अतिरिक्त इसकी अनुभूति का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस कारण भूमि में तो देश काल क्रम मात्रा का भी मूर्तामूर्त रूप ही रहता है। पश्यंती वाक परा जैसी कालातीत नित्य स्वरूपा तो है नहीं, पर हाँ मूर्तामूर्त कालमय अस्तित्व होने के कारण सृष्टि के लीन होने तक नित्य वर्तमान ही रहती है, कभी भी भूत भविष्य नहीं बनती। जैसे बीज में तना शाखाएं पत्र पुष्प फल आदि अव्यक्त रूप में समाये रहते हैं ना, वैसे ही सारी सृष्टि इस पश्यंती वाक्मय वेद में समाहित रहती है। यज्ञ रूप विस्तार से ही यह सृष्टि अनेक रूपों में प्रकट होती है। आहा, आचार्यों की तत्व प्रकाशिका शैली भी कितनी अद्भुत है। महाभारत युद्ध के पश्चात महाभागवत विदुर जी प्राज्ञ पुरुष उद्धव जी से मिलने पर यादवों के कुशल समाचार लेते हुए माँ देवकी जी के बारे में बहुत ही विलक्षण रीति से पूछते हैं।
या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयीं यथा यज्ञवितानमर्थम्।
जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप को धारण करती है, वैसे ही भगवान के श्री विग्रह को अपने गर्भ में धारण करने वाली माँ देवकी जी अच्छी तो है ना। जैसे बीज सारे वृक्ष को आत्मभाव से अपने में धारण करता है ना, वैसे ही वेद मंत्र भी आत्ममय सारी सृष्टि के यज्ञ रूप अर्थ को अपने में धारण करते हैं। इस प्रकार कारण जगत का पश्यंती रूप चैतन्याश्रित भाव स्पंदित ही सृष्टि यज्ञ के क्रम में देश काल क्रम मात्रा के अनुरूप रूपांतरित होता हुआ क्रमशः मध्यमा व स्थूल जगत की वैखरी वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। अतः सृष्टा सृष्टि रचना का विज्ञान ही वेद मंत्र है। इस विशिष्टता के कारण ही स्थूल शब्दमय शाब्द वेद ध्वनि विज्ञान भाव विज्ञान भाषा विज्ञान का अनूठा संगम है। शब्द सेतु, संस्कृत व्याकरण की यह अद्भुत विशेषता है कि इसके शब्द रूपों में कर्ता कर्म करण आदि सप्तकारकों के सभी चिन्ह मिले हुए हैं। अतः किसी भी वाक्य में शब्दों के क्रम परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, पर भाई वेद मंत्रों की आनुपूर्वी में तो थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल समास की दृष्टि से ही ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्रमशः स्पंदित ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से ही ऐसा कहा जा रहा है। बाह्य रूप से स्थूल वैखरी वाणी में रूपांतरित होने पर भी प्राण शक्ति रूपा मध्यमा नित्य वर्तमान पश्यंती वाक का चिन्मय भाव स्पंदन व चैतन्य स्वरूपा परावाक अब भी इस शब्द वेद के गर्भ में प्रतिष्ठित है। समाधि में वेदार्थ की जो अनुभूति होती है ना, उस अनुभूति के पश्यंती वाक रूपा चिन्मय भाव स्पंदन के अनुरूप ही मध्यमा वाक का प्राण शक्ति युक्त स्पंदन और इस मात्रा का बहुत ध्यान रखते हुए सद्भाव पूर्वक स्थूल शब्दमय उच्चारण से एक दिव्य शब्द सेतु का निर्माण होता है। अतः इस शब्द सेतु से यहाँ से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, पर क्रम मात्रा आदि की नगण्य सी भूल होने पर हम सृष्टि के इस मौलिक चिन्मय स्पंदन को नहीं पा सकते। अतः प्राचीन वेदाचार्यों ने अपनी शिक्षा ग्रंथों में उस मौलिक स्पंदन के अनुरूप ही स्थूल वर्णाकार ध्वनि के देश काल क्रम मात्रा को बहुत ही सावधानी से सिखाया था। अविनाभाव संबंध। हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये मंत्रात्मक वैदिक शब्द वर्तमान में सामान्य लौकिक व्यवहार में प्रयोग में आने वाले शब्दों जैसे निराधार शब्द नहीं है। हमारे सामने घोड़ा खड़ा हो और उसे देखकर हमारे मुख से घोड़ा शब्द निकल पड़े तो यह शब्द आरोपित भाव संबंध के कारण सामने खड़े घोड़े की ओर संकेत तो अवश्य करता है, पर यहाँ तो शब्द और अर्थ प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होते हुए भी अलग अलग ही रहते हैं। पर वेद मंत्रों के तो स्थूल वर्णात्मक शब्दों में भी शब्द और अर्थ में अविनाभाव संबंध रहता है, यानी कि अर्थ का कभी भी शब्द से संबंध विच्छेद नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि शब्द के स्थूल रूप धारण कर लेने के कारण शब्द तो व्यक्त होते हैं, पर उसमें अंतर्निहित मौलिक अर्थ अव्यक्त ही रहता है। वेद मंत्रों के शब्द रूप में दर्शन संभव नहीं होता, पर शब्द के गर्भ में ही अर्थ छुपा होने के कारण बहुत सावधानी पूर्वक पठित इस शब्द सेतु से ही अर्थ में प्रवेश होता है। अतः शब्द ही यथार्थ ज्ञान के कारण होने से प्रमाण कहे जाते हैं। जब प्रत्यक्ष दर्शन संभव न हो, केवल स्वाध्याय करना और सुनना ही संभव हो और सुनते सुनते ही श्रुत्यर्थ प्रकट होता हो, इस दृष्टि से भी वेद मंत्रों की श्रुति संज्ञा सार्थक है। आहा, कितना अद्भुत है यह वेद विज्ञान। जिस मौलिक अर्थ को समाधि के बिना जानने का कोई अन्य उपाय ही नहीं है, जिस चिन्मय अनुभूति को पूर्ण रूप से भाषा में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता, इस शब्द सेतु से समाधि पूर्वक उस अर्थ का विज्ञान कितना सरल सुगम हो गया है। ज्ञान राशि। शब्द के रूप में व्यक्त और अर्थ के रूप में अव्यक्त होते हुए भी शब्द में अर्थ के प्रतिष्ठित होने के कारण इसके मूल में तो ज्ञान ही है ना। अतः हमारे प्राचीन आचार्य कहते थे कि वेद केवल शब्द राशि ही नहीं ज्ञान राशि है। पुनरावलोकन। भाई, अब तो हम और भी अधिक स्पष्टता से जान गए हैं कि सारी सृष्टि के मूल आधार चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्म तत्व ही है। धृधारणे धातु से ही धर्म शब्द निष्पन्न होता है और परब्रह्म परमात्म तत्व ने ही सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। अतः ये नित्य स्वरूप ही परम धर्म है। चैतन्य स्वरूप परब्रह्म अपने आप के लिए नित्य प्रकाशित ही रहते हैं, कभी भी आवृत नहीं होते, केवल जागतिक प्रपंच के लिए ही आवृत अव्यक्त होते हैं। अतः आत्मानुभूति अभिव्यक्ति के इस एकात्म स्वरूप को ही परावाक कहते हैं। यह परावाक वेद विज्ञान का मूल स्वरूप है। विश्व विग्रह वैखरी वाणी में वेदों के प्रकट होने पर भी यह परावाक इन वेद मंत्रों में स्वरूपतः विद्यमान रहती है। अतः वेद सनातन धर्म और परब्रह्म तत्वतः एक ही है। परब्रह्म के रूप में होने के कारण ही वेदों को भी शब्द ब्रह्म ही कहते हैं। साक्षी, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में मौलिक भेद नहीं है, तत्वतः दोनों एक हैं और दोनों ही भगवान के नित्य स्वरूप हैं। राजा चित्रकेतु को उपदेश देते हुए इस सत्य तथ्य की सीढ़ी में भगवान स्वयं कहते हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो भे शाश्वती तनु। ऋषि भी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं,
नाभि हृदादि हसतुम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्ति रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः।
वेद आपका विशुद्ध हृदय है जिसमें तप, स्वाध्याय एवं संयम द्वारा व्यक्त, अव्यक्त और इन दोनों से परे सत्स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि होती है। ज्ञान कर्म प्रेरणा, हमने अभी अभी चर्चा की है कि परावाक चैतन्य स्वरूप है और यही श्रुति का शाश्वत स्वरूप है। श्रुति की इस परा से वैखरी तक की विज्ञानमय अंतर यात्रा के क्रम में इसका चैतन्य स्वरूप तो वैसा का वैसा ही बना रहा, साथ ही इस शब्द सेतु के स्वरूप सिद्धि के लिए ज्ञान कर्म की प्रेरणा व यज्ञ रूप प्रक्रिया भी समाहित हो गई है। भगवत स्वरूप को हृदय में धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए थे, अतः इस ज्ञान कर्म प्रेरणा व यज्ञ रूप प्रक्रिया का बीज तो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के संकल्प के साथ कारण भूमि में ही बो दिया गया था। हाँ, अव्यक्त स्वरूप भगवान के सर्ग के सत्संकल्प से ही व्यक्ता व्यक्त रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, अतः सर्व वेदमय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के आदेशानुसार सृष्टि विस्तार के पुनः संकल्प से ही वेदों के मौलिक स्वरूप से ज्ञान कर्म प्रेरणा व यज्ञ रूप प्रक्रिया सहित वैखरी वांग्मय वेद मंत्रों व वेद विज्ञानमय विसर्ग सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सृष्टि के प्रारंभिक काल के इस प्रसंग में ब्रह्मा जी को अनेक बार वेदमय विधाता, सर्व वेदमय ब्रह्मा जी, वेद गर्भ ब्रह्मा जी आदि सार्थक व सम्मानपूर्ण शब्दों से संबोधित किया गया है। आप इसकी छोटी सी झलक देखिए तो सृष्टि रचना की इच्छा से तप में निरत ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन देकर संबोधित किया, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य शिक्षया। वेदगर्भ, तुमने सृष्टि रचने की इच्छा से चिरकाल तक तप करके मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट किया है। बहुत ही सद्भावपूर्ण प्रसंग है। सृष्टि रचना के लिए प्रस्तुत ब्रह्मा जी बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं,
नाभि हृदादि हसतुम्भसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्ति रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः।
इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आप अनंत शक्ति की कृपा से मेरी वेद विज्ञान शक्ति विलुप्त न हो। यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए अनंत शक्ति और अपने लिए विज्ञान के साथ ही शक्ति शब्द जोड़कर बहुत ही सुंदर व सार्थक प्रयोग किया है। विज्ञान स्वरूप आत्म चैतन्य से भासित कारण भूमि की संज्ञा विज्ञान शक्ति हो जाती है। यह गिरा शब्द भी ग्री विज्ञाने धातु से निष्पन्न हुआ है। ग्री धातु का अर्थ है विज्ञान होना, जानना। अतः गिरा शब्द का अर्थ हुआ विज्ञान को अभिव्यक्त करने की शक्ति वाणी। यह सारी सृष्टि वाक् तत्व के रूप में ही अभिव्यक्त हो रही है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी के रूप में यह वाक् तत्व ही अभिव्यक्त होता है। इसे तो हम समझ ही चुके हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी के आत्मभावमय पश्यंती वाक रूपा महत्तत्व से परिणाम को प्राप्त वैखरी वाणी रूपी स्थूल जगत तक की वेद विज्ञानमयी अभिव्यक्ति निगमस्य गिराम विसर्ग ही तो है। अतः ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद विज्ञान में विसर्ग शक्ति लुप्त न हो। भगवान ने पहले भी ब्रह्मा जी को वेद गर्भ जैसा सार्थक संबोधन दिया था, पर भगवान के प्रति अपने शिशु सुलभ भाव वाले ब्रह्मा जी तब भी अपने में अंतर्निहित सृष्टि की रचना को नहीं जान पाते, अतः उहापोह में हैं। तब एक बार और वेद गर्भ जैसे अर्थपूर्ण शब्द से संबोधित करते हुए भगवान उन्हें आदेश देते हैं। गर्भ आलस्य मत करो, सृष्टि रचना का उद्यम करो। आप मुझसे जो प्रार्थना कर रहे हैं वह तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। भाई, यह कोई ज्ञाता ज्ञेय के भेद जैसा ज्ञान तो है नहीं। यह तो ऐसा विज्ञान है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में भिन्नता नहीं रहती, इनका एकत्व बोध होता है। अतः इसके लुप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे ब्रह्मा जी की तो बात ही अलग है। हम मानवों में भी यह विज्ञान सुप्त भले हो पर लुप्त नहीं है। महत्तत्वमय विज्ञान में प्रतिष्ठित ब्रह्मा जी इस एक रूपता के कारण ही सृष्टि के रूप में मानो अपने आप को ही प्रकट करते हुए सारी सृष्टि के कारण रूप में नित्य वर्तमान ही रहते हैं। इसीलिए भगवान स्वयं वेदमय ब्रह्मा जी को अपने आप से ही सृष्टि रचना का आदेश देते हैं। इसी कारण ब्रह्मा जी का अपनी सृष्टि के साथ कारण रूप में अभेद व कार्य रूप में भेद जैसा भेदाभेद संबंध है। अरे केवल अपनी बनाई सृष्टि के साथ ही नहीं, स्वयं भगवान के साथ भी उनका तो चैतन्य स्वरूप की दृष्टि से तो अभेद और कारण जगत में अपनी स्थिति को लेकर भेद जैसा भेदाभेद संबंध ही रहता है। यह एक रोचक तथ्य है कि हमें अपने ही आत्म परमात्मा स्वरूप से जैसी और जितनी न्यूनाधिक भिन्नता का बोध होता है ना, ठीक उतना ही हमें सृष्टि से भी अपने से भेद व भिन्नता का अनुभव होता है। हम जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे ही परमात्मा व सृष्टि दोनों से हमारा आंतरिक भेद कम होते होते एक दिन स्वरूप सिद्धि होने पर यह भेद पूर्णतः लुप्त हो जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। इतने सारे तथ्यों के प्रकाश में हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में अनेक दृष्टिकोणों से एक बार सृष्टा सृष्टि रचना के विज्ञान को ही वेद विज्ञान सिद्ध किया है। तत्वानुभूति। भाई, जिसे हम भूति की दृष्टि से सृष्टि का विज्ञान कहते हैं ना, उसे ही संहार क्रम की दृष्टि से अनुभूति का विज्ञान कहते हैं। अतः तत्वानुभूति भी वेद विज्ञान से ही संभव है, यह तो स्वतः सिद्ध है ना? इसीलिए संसार में माया के कारण भ्रमित मानवों की दुर्दशा का वर्णन करके श्री मार्कंडेय ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसी कारण पूर्व में अज्ञानी होने पर भी जब उसे आपकी कृपा से आपसे ही प्रकट वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। श्री मार्कंडेय ऋषि भावपूर्ण स्तुति करते हुए आगे कहते हैं,
यद् दर्शनम् निगम आत्मरः प्रकाशम् मुष्यन्ति यात्र कवयो जपरायतन।
प्रभो, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। हम सभी मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर में अर्जित संस्कारों से संचालित होते हैं, अतः सबकी रुचियां भी अपने अपने संस्कारानुसार भिन्न भिन्न ही होती हैं। यदि किसी को सर्वोच्च लक्ष्य में रुचि न हो, वह महेंद्र या प्रजापति के स्वर्ग पर्यंत सुख की सीमित इच्छा ही रखता हो, तो उसके लिए भी वेद उतने ही उपयोगी हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, यदि किसी की इच्छा हो कि मैं छंदों के लोक ब्रह्मलोक में जाऊं, तो नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके वेदों के स्वाध्याय के लिए अपनी देह आचार्य को समर्पित कर देवें। यदि भगवत प्राप्ति और ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गीय सुख की इच्छा भी न हो, केवल पृथ्वी पर उपलब्ध सुख ही पाने की इच्छा हो तब भी वेदानुशासन उतना ही उपयोगी है। देखो भाई, जिसने हम सबको धारण किया है वह तो परम धर्म है ही, साथ ही सारी सृष्टि से प्रकट होने वाली जिस ज्ञान कर्ममयी प्रेरणा और यज्ञ रूप प्रक्रिया को हम धारण करते हैं ना, वह भी हमारे लिए स्वधर्म है। हम स्वधर्म के पालन से लौकिक या ब्रह्मलोक आदि पारलौकिक सुख ही नहीं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत दर्शन आदि जो इच्छा हो वह सब पा सकते हैं। सार सर्वस्व। हमारे सारे ही वेदानुकूल शास्त्र, इतिहास हो या पुराण, दर्शन हो या स्मृतियाँ, सभी कथा, कविता, सूत्र, सूक्तियाँ आदि अनेक विधाओं से, अनेक रूपों में परम धर्म के साथ ही ज्ञान कर्म प्रेरणा व यज्ञ रूप प्रक्रिया के द्वारा स्वधर्म को ही परिभाषित व प्रचारित कर रहे हैं। सभी शास्त्रों का मुकुटमणि श्रीमद् भागवत इन सब में अन्यतम है। यह तो परमहंस संहिता है जिसे ब्रह्म विज्ञान में नित्य प्रतिष्ठित श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुकदेव जी ने अति आश्चर्यजनक रूप से 7 दिन तक एक ही स्थान पर रहकर समाधि भाषा में ही आत्मस्वरूप परीक्षित को सुनाया है। आपने तो सुना ही होगा, श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में ही इसका रहस्योद्घाटन करते हुए गाते हैं, कल्पतरु का अमृत रस से परिपूर्ण सुपरिपक्व फल श्रीमद् भागवत श्री शुकदेव जी महाराज के श्री मुख से पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। इस रस स्वरूप श्रीमद् भागवत का बार बार पान करते रहो। हम सब यह तो जानते ही हैं कि हमारे मन में सृष्टि की जिस किसी भी वस्तु को पाने की कामना हो, कल्पतरु उन सबको पूर्ण करता है। यह निगम अर्थात वेद कल्पतरु भी सृष्टि के लौकिक पारलौकिक फलों को देने वाला तो है ही, पर इसका सुपरिपक्व फल तो स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप भागवतामृत ही है। वेद स्वयं उद्घोषणा करते हैं, रसो वै सह, वह रस स्वरूप है, रस ही रस है, रस के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अतः इसका यथार्थ अनुभव करने वाले भी सृष्टि के तीनों गुणों के परे चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवत प्रेमी परमहंस ही हैं। निर्गुण निराकार स्वरूप ही नहीं, भगवान की मधुराति मधुर लीला का भी देश काल में सीमित दिखाई देने पर भी अनंत स्वरूप ही है। इसका यथार्थ आस्वादन ही नहीं, यत्किंचित अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम अधिकारी भी भगवत प्रेम में डूबे परमहंस ही हो सकते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज ऐसे ही अनंत श्री विभूषित आचार्य शिरोमणि हैं, जिनके श्री मुख से इस मायिक सृष्टि के परे स्थित यह अति दुर्लभ भगवत रस भूतल पर प्रकट हुआ है। निगम कल्पतरु का सुपरिपक्व फल यह श्रीमद् भागवत स्वयं भी रस स्वरूप है और इसके स्वाध्याय का फल भी रस स्वरूप भगवान की प्राप्ति ही है। अतः हे भावुक भक्तों, निरंतर इसका पान करते रहो। महान टीकाकार आचार्य श्रीधर स्वामी रसमालय में आलयम का बहुत सुंदर भाव देते हुए कहते हैं, न च भागवतामृतपानम मोक्षेपि त्याज्यम इत्याह आलयम लयो मोक्षः। श्रीधरी टीका। लय यानी मोक्ष हो जाने पर भी भागवतामृत का पान करते रहें। भाई, जागतिक प्रपंच से मुक्त पुरुष ही इस रसपान के उत्तम अधिकारी हैं। हम लोग तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदों की बहुत महिमा गाई गई है और इसे भी वेदों के समान ही सिद्ध किया है। श्री सूत जी, श्री शौनक जी आदि ऋषियों से कहते हैं,
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तम श्लोक चरितं जकार भगवान ऋषि।
भगवान वेदव्यास जी ने उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र से परिपूर्ण वेदों के समान भागवत नाम का पुराण रचा है। इसमें सारे वेद और इतिहासों के सार सार का संग्रह किया गया है। इसे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बहुत अच्छी प्रकार सुनाया है। केवल ऐतिहासिक कथाएं ही नहीं, इस श्रीमद् भागवत में तो वेदों के ज्ञान विज्ञान का सार भरा हुआ है। इस ओर संकेत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं,
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजह्वे भृङ्गवद्वेदसारम्।
जैसे भौरा पुष्पों से उनके सार सार का पराग का संग्रह कर लेता है, वैसे ही वेदों के प्रकाशक भगवान ने स्वयं अपने सेवकों को संसार भय से मुक्त करने के लिए वेदों के ज्ञान विज्ञान का सार निकाला है। केवल एक स्थान पर संक्षिप्त रूप में ही नहीं, यह वेदों के ज्ञान विज्ञान का सार तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से पूर्णता तक सभी स्कंधों में भरा हुआ है। इस ओर सार गर्भित संकेत करते हुए श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी से प्रथम स्कंध के विषय में कहते हैं,
प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्।
इस महापुराण में परम गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। इस ब्रह्म तत्व में ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इसमें उसी परम तत्व की प्राप्ति के साधनों के ज्ञान से युक्त अनुभवात्मक विज्ञान समाहित है। ये ऐतिहासिक कथाएं भी केवल इतिहास सुनाने अथवा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं कही गई हैं। इन कथाओं से भी विज्ञान व वैराग्य की जागृति होती है, इसीलिए कही गई हैं। इस ओर सार्थक संकेत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, पुरुषों की कथाएं तुम्हें विज्ञान व वैराग्य का उपदेश देने के लिए कही गई हैं। हमारे सारे ही शास्त्र शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से रचे गए हैं। इस सत्य तथ्य की सुस्पष्ट धारणा के लिए ही हम बार बार वेद 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 विज्ञान 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 का स्मरण कर रहे हैं।